नमस्कार भारत, 4 मई दिन शनिवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। पश्चिम बंगाल पहुंचा तूफान फड़ी, ओडिशा में जनजीवन पर भारी असर, मृतक संख्या बढ़ने की आशंका, बिजली और टेलीफोन सेवा ठप।
आज 10:30 बेलू जी उठिल सकाल उठिला बेलू देखुची पवन बहुत जोर बोची।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्रों में कितनी गंभीर है कुपोषण की समस्या।
मोदी दवा करा रहे हैं हमारे बच्चों के, ना कोई मदद कर रहे हैं हमारे लोगों की और ना राहुल कर रहे हैं।
और विवेचना में रेहान फजल के साथ समाजवादी नेता मधु लिमई की बात।
एक अपने वाणी और कर्म के में जरा भी कोई भेजना करने वाले व्यक्ति वो थे। सांसदों को पेंशन नहीं मिलना चाहिए, ये उनकी राय थी।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवा सिनी से सुनिए। भारी बारिश और तेज हवाओं वाले चक्रवाती तूफान फणी की वजह से ओडिशा में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी है। तूफान फणी अब ओडिशा से होकर पश्चिम बंगाल पहुंच गया है और इसके मद्देनजर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले 48 घंटों के लिए अपनी पूर्व नियोजित रैलियां रद्द कर दी हैं। तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला की वजह से 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में लगातार जारी हिंसा के कारण इबोला को फैलने से रोकने की कोशिशों में दिक्कत हो रही है। पूर्वी कांगो में कई विद्रोही समूह सक्रिय हैं और यहां लोगों में स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर भरोसे की बेहद कमी है। कांगो में अब भी कई लोग ये मानने तक को तैयार नहीं हैं कि इबोला वायरस जैसी कोई चीज वाकई में है भी। हाल के कुछ महीनों में कई स्वास्थ्य केंद्रों पर हमले भी हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के उप महानिदेशक डॉक्टर माइकल रेयान ने इलाके में जारी हालात पर चिंता जताई।
Insecurity has become a major impediment to ensuring that we can access, engage with.
यहाँ लोगों के मन में असुरक्षा का भाव है और इसकी वजह से हम उनकी उस तरह से मदद नहीं कर पा रहे हैं जैसे हम करना चाहते हैं। हमें इसके लिए बेहतर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मदद चाहिए, आर्थिक और तकनीकी दोनों स्तरों पर, तभी हम लोगों को बचा पाएंगे और इबोला को फैलने से रोक पाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के उप महानिदेशक डॉक्टर माइकल रेयान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेनेजुएला में सत्ता संघर्ष के बीच विपक्ष के नेता खुआन गुआइदो ने अपने समर्थकों से राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का आह्वान किया है। हालांकि मदुरो ने सोशल मीडिया पर अपने नए संदेश में कहा है कि उन्हें देश की सेना का पूर्ण समर्थन हासिल है। मदुरो ने गुआइदो पर अमरीका की मदद से उनके खिलाफ तख्तापलट की कोशिशों का आरोप लगाया। दूसरी तरफ ग्वाइदो ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से भी सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मजबूत और एकजुट है जिसकी वजह से मादुरो अपना नियंत्रण खो बैठे हैं।
Aquí nadie ha hablado de un enfrentamiento, nadie, solamente ellos. Por el contrario.
यहाँ किसी ने युद्ध की बात की ही नहीं, बल्कि उन्होंने ही इसकी बात की। उल्टे हमने तो मंगलवार और बुधवार को ही साथ मिलकर शांतिपूर्ण बैठक करने को कहा था और हम शनिवार को भी यही करेंगे। हम सड़कों पर जाएंगे, हम गलियों में भी जाएंगे, लेकिन शांति से। ये थे वेनेजुएला में विपक्ष के नेता खुआन गुआइदो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन ने कहा है कि अगर इस्लामिक स्टेट में शामिल होने सीरिया गई शमीमा बेगम वापस बांग्लादेश आती हैं तो उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। शमीमा मूल रूप से बांग्लादेशी हैं लेकिन उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। वो 15 साल की उम्र में आईएस में शामिल होने के लिए सीरिया चली गई थी। अब 19 वर्षीय शमीमा की ब्रिटिश नागरिकता भी छीन ली गई है। अमेरिका में बेरोजगारी की दर में पिछले 50 सालों में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। पिछली एक सदी के मुकाबले अब यहाँ बेरोजगारी सिर्फ 3.6% रह गई है। यह आंकड़े सामने आने के बाद अमेरिका के स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त उछाल देखा गया। हालांकि इन आंकड़ों को देखते हुए दुनिया के सबसे अमीर यानी अमरीकी अर्थव्यवस्था के धीमे पड़ने की आशंका भी है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। सबसे पहले बात चक्रवाती तूफान फणी की। ये तूफान पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान कोलकाता से करीब 40 किलोमीटर दूर है। बंगाल की खाड़ी में बना यह तूफान कल सुबह ओडिशा में पुरी के करीब तट से टकराया था। तब से अब तक तूफानी हवाओं की रफ्तार घटी है, लेकिन अब भी करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। तूफान को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट पर उड़ानों को रोक दिया गया है। स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। आम चुनाव के लिए नेताओं की रैलियों के कार्यक्रम भी बदले गए हैं। इसके पहले कल फणी तूफान की वजह से ओडिशा का जनजीवन खासा प्रभावित हुआ। भुवनेश्वर में रहने वाली सस्मिता पांडा ने बीबीसी को बताया।
आज 10:30 बेलू जितकी मुठिल सकाळ उठिला बेलू देखुची पवन बहु जोर बहुची होची कबाड़ फबाड़ पूरा थरीकी।
सस्मिता पांडा कह रही थी कि सुबह से बहुत तेज हवा चल रही थी, सारे दरवाजे हिल रहे थे, कांच भी टूट गए थे, नेटवर्क भी नहीं है, किसी से फोन पर बात भी नहीं हो पा रही है, हमारे पूरे घर में पानी भर गया, यानी स्थिति बड़ी भयावह थी। तूफान के असर से 3 लोगों की मौत की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है। हालांकि मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल वहां क्या स्थिति है ये जानने के लिए अब से कुछ वक्त पहले मैंने भुवनेश्वर में मौजूद अपने सहयोगी सुब्रत कुमार पति से बात की।
ओडिशा में फणी की वजह से लोगों का जो आम जीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और पूरी भद्रक, बालेश्वर, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, जाजपुर आदि जिलों में आम जिंदगी जो है वो प्रभावित हुए हैं। साइक्लोन के तुरंत बाद मैंने भुवनेश्वर के अलग अलग हिस्सों में मैंने घूमा तो वहां पर देखा कि इलेक्ट्रिसिटी तो बिल्कुल है ही नहीं और इसके अलावा इंटरनेट और टेलीफोन की कनेक्टिविटी का भी काफी इशू रहा है। पूरा शहर भुवनेश्वर अंधेरे में है और लग रहा है जो डैमेज हुआ है उसको रिस्टोर करने में काफी समय लगेगा। अभी लोगों को रिलीफ और रेस्क्यू का काम चल रहा है।
हम जानना चाहेंगे कि नुकसान को लेकर क्या जानकारी है। सरकार 0 कैजुअल्टी के टारगेट को लेकर चल रही थी, क्या जानकारी आपके पास है अभी?
देखिए, 0 कैजुअल्टी करना काफी मुश्किल है क्योंकि इतनी तेज हवा और बारिश हुई। इंडिया सोर्सेस के अनुसार 3 लोगों की मौत हुई है, हालांकि कुछ और लोगों के मरने की खबर आ रही है, लेकिन इस पर सरकारी तौर पर कोई भी अभी तक चिंता की गई है। और मैं आपको बता दूं कि टेलीविजन और रेडियो चैनल कुछ हैं जो भुवनेश्वर से ऑपरेट करते हैं, नेटवर्क की वजह से इनका काम अभी ठप हो गया है या पेड़ गिरे हुए हैं। इनको निकालने के लिए फायर सर्विस के 535 टीम को काम में लगाया गया है।
नेटवर्क दिक्कत की वजह से सुब्रत कुमार पति से बातचीत के कुछ हिस्से आप ठीक तरीके से नहीं सुन पा रहे थे। भुवनेश्वर में आज एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू हो सकती हैं। डिप्टी रिलीफ कमिश्नर पी मोहापात्रा ने बीबीसी को बताया कि तूफान के टकराने के पहले ही 11.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया था। इससे नुकसान को सीमित रखने में मदद मिली। उन्होंने बताया कि जो लोग भी रिलीफ कैंप में हैं उन्हें मुफ्त खाना मुहैया कराया जा रहा है। मोहापात्रा ने बिजली को लेकर भी जानकारी दी।
इलेक्ट्रिसिटी हैज सफर्ड ए मेजर डैमेज इन साइक्लोन एंड बिकॉज मेन एंड मटेरियल्स वर केप्ट रेडी, एक्शन हैज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड।
मोहापात्रा बता रहे थे कि तूफान से बिजली आपूर्ति को बड़ा नुकसान हुआ है। इसका पहले ही अनुमान था और इसके लिए लोगों और सामान को तैयार रखा गया था। बिजली सेवा बहाल करने के लिए काम शुरू हो चुका है। अब फणी तूफान पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश की ओर बढ़ रहा है। वहां भी नुकसान को कम करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आप आ सकते हैं bbchindi.com पर। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 मई को 51 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों पर आज प्रचार थम जाएगा। इनमें से एक सीट उत्तर प्रदेश की अमेठी भी है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उम्मीदवार हैं। अमेठी में कुपोषण की समस्या की क्या स्थिति है और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी में हालात कुछ अलग हैं, ये जानने के लिए हमारे साथी अनंत प्रकाश ने दोनों क्षेत्रों का दौरा किया। सुनिए उनकी रिपोर्ट।
आज से लगभग 3 साल पहले कुपोषण के चलते ज्योति की मौत हो गई थी। अमेठी की ज्योति मात्र 7 साल की थी। ज्योति का गांव कस्थुनी पूरब भले ही हाईवे के किनारे बसा है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको गाड़ी से उतरकर पैदल चलना पड़ता है। ज्योति के घर में दाखिल होते ही हमें सबसे पहले वो खाट दिखी जिस पर कुछ साल पहले तक बीमार ज्योति लेटी रहती थी। ज्योति की नानी फूलकली देवी उन्हें याद करते हुए कहती हैं,
2 साल तो नीक रही, ओकर बाद मसीर ओकर बड़ा हुआ ला। गरीब मने खेती बाड़ी भैया है, ये नहीं मंजूरी का आशा, दिन भर कमाए संजय के आग बरत रही, दवाई कहाँ से कराएगी।
अपनी नातिन को खोने वाली फूलकली देवी अमेठी की मतदाता हैं। कुपोषण का प्रकोप सिर्फ राहुल गांधी की संसदीय सीट अमेठी पर नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी में भी देखने को मिलता है। कुपोषण को बढ़ाने में जातिगत भेदभाव क्या भूमिका अदा करता है, ये बात वाराणसी पहुंचने पर पता चलती है। वाराणसी की मुसहर बस्ती में रहने वाली गीता की कहानी कुपोषण से जुड़े जातिगत पहलू को उजागर करती है। मिट्टी के बने चूल्हे पर रोटियां सेकती हुई गीता की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं।
न खेत बा न कियारी बा न हमने कत्तो जात बाणी तो मारत बाणन कुन भी ठाकुर न हमने के पैखाना बा कुछ ही बा नाही बा तो हमने केहर लिखले।
गीता वाराणसी की मतदाता है। बीबीसी ने प्रधानमंत्री पद के दो प्रबल दावेदारों की संसदीय सीटों पर पहुंचकर कुपोषण को लेकर उनकी उपलब्धियों का जायजा लेने की कोशिश की है। अमेठी की वोटर लीलावती दुबे अपने सांसद राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी नाराजगी कुछ इस तरह बयां करती हैं।
मोदी दवा करा रहे हैं हमारे बच्चों के, न कोई मदद कर रहे हैं हमारे लोगों की और न राहुल कर रहे हैं। हम लोग जिस जगह पर है वही जगह पे है।
भारत सरकार कुपोषण निवारण के लिए अब तक 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के हालिया रवैये से समस्या का निदान निकलने वाला नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता श्रुति नागवंशी कुपोषण से जुड़े आंकड़ों को संसदीय सीट के स्तर पर जारी करने की सलाह देती हैं।
इस समस्या का निदान तो देखिए ICDS के तहत प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन वो काफी नहीं है कि जब तक हमारे पॉलिसी लेवल पे कोई काम नहीं होगा तब तक कोई स्थायी परिवर्तन होने वाला नहीं है।
भारत का संविधान कुपोषण से पीड़ित बच्चों को भी जीने का अधिकार देता है, लेकिन इसके बावजूद पिछले 70 सालों में लाखों बच्चों की मौत कुपोषण की वजह से हो चुकी है। अमेठी और वाराणसी से लौटकर अनंत प्रकाश, BBC।
आम चुनाव के मैदान में मौजूद कुछ महिला उम्मीदवारों के प्रचार के दौरान BBC ने उनसे मुलाकात की, साथ ही वोटरों से भी बात की और ये समझने की कोशिश की कि उन्हें इन उम्मीदवारों से कितनी उम्मीदें हैं। इस कड़ी में आज बात BJP नेता साध्वी निरंजन ज्योति की, जो अपने बयानों की वजह से विवादों में रही हैं। उनसे मुलाकात की BBC संवाददाता सर्वप्रिया सांगवान ने। सुनिए ये रिपोर्ट।
अपने तेज तर्रार बयानों के लिए जानी जाने वाली साध्वी निरंजन ज्योति फिलहाल जनता के बीच अपने लिए समर्थन जुटा रही हैं।
मुझे नहीं लगा कि मैं कैसे यहाँ पहुँची। मेरे माता पिता को भी बहुत ताने सुनने पड़े, बेटी चली गई, नाक कटा के चली गई, ये करके चली गई। 10 साल तक मैंने मुड़ के नहीं देखा उन्हें।
राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा बनकर विश्व हिंदू परिषद से BJP में आई, पहले अपने जन्मस्थल हमीरपुर से विधायक रही और 2014 में फतेहपुर से सांसद बनी। उनके रामजादे वाले बयान की चर्चा राष्ट्रीय मीडिया में कई दिन रही थी।
अब उस भाषा को लेकर के मैं जिस पद में हूँ नहीं बोलना चाहिए, मैंने इसीलिए खेद भी व्यक्त किया था।
निरंजन ज्योति उसी सीट से दोबारा उम्मीदवार हैं जो कभी पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह का लोकसभा क्षेत्र था। उसी क्षेत्र में आने वाले हुसैनगंज के गांव संवत में हम निरंजन ज्योति के साथ पहुँचे, ये समझने कि एक महिला उम्मीदवार को वहाँ की जनता कैसे देखती है।
लोकसभा कर रहे हैं आप तो लोग तो बात ही नहीं कर पा रही उनसे।
नहीं 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 कर पाते हैं।
किस लिए नहीं कर पाते?
इतनी भीड़ रहते हैं वहाँ, सब लोग कहाँ चले जाएंगे। हम
कौन लोग हैं भीड़ में? कौन
मतलब सभी अपने हैं, सब गांव के सब बड़े हैं, जैसे कैसे वहाँ चले जाए हम लोग।
ये सब बड़े आदमी अपनी फीजा जमा रहे हैं, जनता से पूछो कि क्या हो रहा है।
हम बेटा पानी तो बहुत बहुत दूर से ला रहे हैं, पानी मिल नहीं रहा, परेशान है।
नाम साध्वी निरंजन ज्योति तो लग सकता है कि हिंदुत्व या मंदिर अहम मुद्दा होगा, मगर अपनी छवि से अलग वो अपने काम को लेकर वोट मांग रही हैं।
मेरे काम में स्पष्ट है जिले का विकास।
उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल को लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड भी छपवाया है। अपने MP फंड का लगभग 99% उन्होंने खर्च किया है। इसके बावजूद उन्हें लगता है कि वे अपने नाम और काम पर दोबारा वोट नहीं ले पाएंगे।
ये वोट मुझे नहीं मिलेगा, ये वोट किसको जाएगा? नरेंद्र मोदी जी को जाएगा, एक एक वोट जाएगा।
बस अब मोदी जी तो बीच में सबकी वोट खींच रहे हैं, हम साधु को क्या जाने भाई, इनको नहीं जानते, खाली मोदी को जानते कि मोदी नेता अच्छा है।
फतेहपुर में सड़क, शौचालय, पक्के घर और पानी का मुद्दा बना हुआ है और निरंजन ज्योति इन मुद्दों पर लोगों को आश्वस्त भी कर रही हैं। लेकिन फतेहपुर में वोटर अब भी उम्मीदवार के नाम या काम पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व को देखकर वोट देने की सोच रहा है।
ये थी सरप्रिया सांगवान की रिपोर्ट। उधर राजस्थान की चुरू लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रफीक मंडेलिया चर्चा में है। वजह यह है कि दिल्ली और राजस्थान समेत 7 राज्यों में वो अकेले मुस्लिम उम्मीदवार है। सवाल है कि प्रमुख राजनीतिक दल मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में क्यों नहीं उतारते हैं। जवाब तलाशने की कोशिश की है बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे ने।
बड़े सोच विचार करने की जरूरत है। देखो विकास चाहिए आज। देखो
चुरू लोकसभा सीट से खड़े कांग्रेस के उम्मीदवार रफीक मंडेलिया न सिर्फ राजस्थान बल्कि उत्तर भारत के 7 प्रमुख राज्यों की कुल 91 लोकसभा सीटों पर किसी भी मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टी द्वारा खड़े किए गए अकेले मुस्लिम प्रत्याशी हैं। राजस्थान से पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 1850 वोटों से हारे मंडेलिया इस बार जीत का दावा कर रहे हैं।
जैसा मैंने अभी चुरू विधानसभा चुनाव लड़ा, मुझे 85,000 वोट मिले, उसमें 30,000 माइनॉरिटी के, 55,000 हिंदू भाइयों के, तो मुझे ये एहसास होता ही नहीं है हिंदू मुस्लिम का, और ना मैं मानता हूँ।
राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे 7 महत्वपूर्ण उत्तर भारतीय राज्यों में भाजपा और कांग्रेस को मिलाकर सिर्फ एक मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषक राजन महान इसे चुनाव जीतने की होड़ से जोड़ रहे हैं।
सभी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हों चाहे दूसरी पार्टियां हों, वो मेरिट को कम तवज्जो दे रहे हैं और वो विनेबिलिटी को ज़्यादा देते हैं चुनाव के समय पे। तो इसकी वजह से उन्हें लगता है कि भाई मुस्लिम्स का ऑटोमेटिक या नेचुरल अपील जो है वो सिर्फ शायद मुस्लिम्स तक सीमित हो जाएगा।
इधर मंडेलिया बीते 5 सालों में मॉब लिंचिंग की कई घटनाओं के कारण लगातार सुर्खियों में रहने वाले राजस्थान के साम चुनाव में खड़े अकेले मुस्लिम प्रत्याशी होने के दबाव को नकारते हैं।
भारतीय जनता पार्टी तो कभी टिकट देती नहीं माइनॉरिटी को, या कांग्रेस पार्टी एक टिकट देती है, और टिकट में क्या होता है बदलाव। जैसा 2009 में मैं लड़ा, फिर मैंने काम किया, फिर 2014 में दूसरे को दे दिया, फिर कभी चूरू दे दिया, कभी अपने टोंक सवाई माधोपुर दे दिया, उससे क्या होता है कैंडिडेट बदलाव हो जाता है और उसका एरिया चेंज हो जाता है, तो वो थोड़ा इफेक्ट होता है।
वहीं राजन महान जैसे जानकार उत्तर भारत के लोकसभा प्रत्याशियों में अल्पसंख्यकों के घटते प्रतिनिधित्व को निराशाजनक मानते हैं।
हमने देखा बीजेपी ने ये एक्सपेरिमेंट यूपी में किया, गुजरात में किया, और अब ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टियां भी इसके असर में कहीं डिफेंसिव हो के मुसलमानों को उतने कैंडिडेट्स नहीं दे पा रहे हैं जितने की वास्तव में दिए जाने।
6 मई को चुनाव के 5वें चरण में मतदान करने वाली चुरू की जनता रफीक मंडेलिया के साथ साथ अल्पसंख्यकों के भारतीय राजनीति में प्रतिनिधित्व पर भी अपने फैसले को ईवीएम मशीन्स में बंद करेगी। प्रियंका दुबे, बीबीसी, चुरू, राजस्थान।
और अब आज के अखबारों की बात सिंधु आसनी के साथ। जी सिंधु।
जी वात्सल्य, इकोनॉमिक टाइम्स में खबर है कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बिहार के मुजफ्फरनगर बालिका आश्रय गृह मामले में जो अभियुक्त हैं ब्रजेश ठाकुर, उन्होंने और उनके साथियों ने 11 लड़कियों की हत्या की थी, तो काफ़ी सनसनीखेज खुलासा है। सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसकी टीम को इस मामले की जाँच के दौरान हड्डियों का एक बंडल मिला है। एक और खबर जो कई अखबारों में दिख रही है वो ये है कि पीएम मोदी के 2 भाषणों को लेकर जिनमें चुनाव आयोग में बातचीत चल रही थी और उन्हें क्लीन चिट मिली, उनमें एक सदस्य ऐसा था जो पीएम मोदी के भाषण को आपत्तिजनक मान रहा,
यानी चुनाव आयोग के बीच में राय बटी
हाँ,
थी।
आम सहमति नहीं थी। एक और खबर है कि अब पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद का प्रमुख जो मसूद अजहर है उन्हें वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया यूएन के द्वारा, तो अब पाकिस्तान उनकी संपत्ति जब्त कर रहा है और उनकी यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा रहा है।
जी बहुत शुक्रिया सिंधु वासनी, आज वक्त हमारे पास इतना ही है।
बीबीसी इंडिया बोल।
श्रीलंका में बम धमाकों के बाद चेहरे ढकने पर लगा प्रतिबंध, केरल के मुस्लिम संस्थान ने भी स्कूलों में बुर्का पहनने पर लगाई पाबंदी। इस बीच आया शायर जावेद अख्तर का बयान, बुर्के के साथ घूंघट पर भी लगे रोक, आपकी क्या राय है? इस बार बीबीसी इंडिया बोल में इसी विषय पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब विवेचना। 60 और 70 के दशक में एक शख्स ऐसा हुआ करता था जो कागजों का पुलिंदा दबाए जब संसद में प्रवेश करता था तो ट्रेजरी बेंच पर बैठने वाले सोचते थे न जाने आज किसकी शामत आने वाली है। जिक्र हो रहा है समाजवादी आंदोलन के नेताओं में से एक मधु लिमय का। 1 मई को उनकी 97वीं जयंती थी। इस बार विवेचना में मधु लिमय के जीवन पर रोशनी डाल रहे हैं रेहान फजल।
हम लोग चाहते हैं कि जमीन के बंटवारे की समस्या ग्रामीण इलाके में सबसे महत्वपूर्ण है और जमीन की बंटवारे की दिशा में न केंद्र सरकार ने न कांग्रेस की राज्य सरकारों ने कोई ठोस कदम अभी तक उठाए।
ये आवाज है उस शख्स की जिसे संसद में कागज का पुलंदा लिए घुसते देखकर सत्ता पक्ष की फूंक सरक जाया करती थी कि न जाने आज किसकी शामत आने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधु लिमय की। बहुत से लोगों को उनसे सख्त चिढ़ भी थी। उनको लगता था कि 1979 में उनका बना बनाया खेल मधु लिमय की वजह से बिगड़ गया। समाजवादियों को डर रहता था कि पता नहीं वो कुर्सी दौड़ में जीतने के लिए उनकी वक्ती तिकड़मबाजियों पर क्या कुछ कहें। तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ के समय ही सुनाई देने वाली अंतरात्मा की आवाज के दौर में मधु लिमय लोकतंत्र, आडंबरहीनता और साफ सार्वजनिक जीवन के पहरेदार बन गए थे। मशहूर समाजवादी चिंतक और मधु लिमय को नजदीक से जानने वाले रघु ठाकुर बताते हैं।
वो एक आजीवन योद्धा रहे। एक आदमी जो मात्र 14-15 साल की उम्र में आजादी के आंदोलन में जेल चला गया और जब 44 में विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद छूटे, जब गोवा की मुक्ति का सत्याग्रह चला तो उसमें वो जेल गए, 12 साल की वो सजा हुई और सजा के अलावा जब वो गिरफ्तार हुए थे और लाठियां जली थी तो बॉम्बे के अखबारों में ये समाचार छप गया था कि मधु लिमय गेले मधु लिमय का निधन हो गया और उनकी पत्नी चंपा जी के पास में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आ गए। एक अपने वाणी और कर्म के में जरा भी कोई भेदना करने वाले व्यक्ति वो थे। सांसदों को पेंशन नहीं मिलना चाहिए, ये उनकी राय थी, तो उन्होंने सांसद की पेंशन नहीं ली और अपनी पत्नी को भी कहा कि इस पेंशन का पैसा मेरी मृत्युवादी मत लेना, वो नहीं लिया। उन्होंने ये महसूस किया कि जब 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल का 1 साल बढ़ा दिया और संसद का 1 साल बढ़ा दिया तो उनका महसूस करना था कि संसद का टाइम 5 साल का था, 5 साल चुने गए थे, कुछ इस्तीफा देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने दूसरों का इंतजार नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया।
मधु लिमय ने दुनिया को बताया कि संसद में बहस कैसे की जाती है। वो प्रश्नकाल और जीरो आवर के अनन्य स्वामी हुआ करते थे। जब भी जीरो आवर होता सारा सदन सांस रोक कर एकटक देखता था कि मधु लिमय अपने पिटारे से कौन सा ऐसा नाग निकालेंगे और किस पर छोड़ देंगे। मशहूर पत्रकार और एक जमाने में मधु लिमय के नजदीकी रहे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक याद करते हैं।
मधु लिमय बड़े गजब के इंसान थे। जब संसद के हॉल में प्रवेश करते थे तो कई बार मैंने देखा प्रधानमंत्री जी और मंत्री लोग वो सब अपनी कुर्सी में से हिलने लगते थे और सावधान हो जाते थे कि मधु लिमय आ रहे हैं। और उस समय डॉक्टर लोहिया के मुश्किल से 7-8 सांसद थे, तो जैसे ही मधु लिमय, किशन पटनायक, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मणिराम बागड़ी, ये लोग जैसे ही आते थे एक हलचल सी मच जाती थी संसद में कि जैसे कोई तूफान आने वाला है। और उसमें सबसे ज्यादा लोग, सत्तारूढ़ लोग, मधु लिमय जी से डरते थे कि मधु जी आ गए।
मधु लिमय की रुचियों का रेंज बहुत विस्तृत था। महाभारत पर तो उनका अधिकार सा था। संस्कृत भाषा और भारतीय बोलियों के वो जानकार थे। संगीत और नृत्य की बारीकियों को भी वो बखूबी समझते थे। जानी मानी नृत्यांगना सोनल मानसिंह उनकी नजदीकी दोस्त थी।
Those days I don't think the politicians were so needless and so unartistic, sorry to say that. Simple. He used to wash his own clothes, Sakhadi. And his wife Champaji was a professor of Sanskrit in Bombay University. She used to tease him. Madhu, teri girlfriend aayi hai. I found in him a wonderful friend and I used to confide in him even my personal emotions. He was a great scholar and a very keen open ear. I remember modern school Shankarlal Hall, the last jugalbandi between Pandit Ravi Shankar and Ustad Ali Akbar Khan with Ala Rakhab on tabla. It was chaka chak full. Madhujit and my another friend and we were all on the Gaddi Takya Masnad. And as I started playing, Madhuji whispers to me, Sitar to mili nahi hai. Jankari, oh, that ear, that keen, sharp ear. So that also extends, you know, when you are so sharp in your perceptions.
डॉक्टर वैदिक बताते हैं कि उन्होंने मधु लिमय को कभी फिजूल खर्ची करते नहीं देखा। उनके साथ घर की खिचड़ी और नॉर्थ एवेन्यू की कैंटीन का 2-2.5 रुपए वाला खाना उन्होंने कई बार खाया।
उनकी और मेरी प्रवृत्ति एक जैसी, कभी इलेबोरेट लंबा चौड़ा खाना नहीं बनता था। मुझसे कहते वैदिक क्या बनवाया तुम्हारे लिए, मैंने कहा मधु जी वही जो आप खाते हैं, वो खिचड़ी खाते थे हम दोनों, खिचड़ी और दही, यही हमारा लंच होता था हमेशा। एक बार की बात मुझे याद है, कुमार गंधर्व जी यहाँ गंधर्व महाविद्यालय में ठहरे थे, तो मधु जी को मैं ले गया, हम दोनों वहाँ सुनते रहे। तो कुमार जी ने पूछा कि वैदिक तुमको तो अच्छा लगता ही है, मधु जी को कैसा लगा? तो मालूम मधु जी ने एक वाक्य कहा, वो आज तक मुझे याद है, बोले हमको त्रिलोक के दर्शन होता है।
मधुलिमय की सादगी का आलम यह था कि घर में ना फ्रिज था, ना एसी और ना ही कूलर, कार भी नहीं थी उनके पास, हमेशा ऑटो या बस से चला करते थे। ईमानदारी उनमें इस हद तक भरी हुई थी जिसकी आज के युग में कल्पना भी नहीं की जा सकती।
एक बार क्या हुआ, नॉर्थ एवेन्यू वाले मकान में मैं शायद रात को वहीं सोया, तो थोड़ी देर मैंने देखा कि एक डाकिया आया, उसने कहा कि 1,000 रुपए का मनी ऑर्डर। साहब उस जमाने में 67-66 के दिनों में 1,000 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी, प्रोफेसरों की तनख्वाह 300 रुपए महीना होती थी। मैंने ले लिए और साइन कर दिया, मैंने खास देखा भी नहीं किसने भेजे हैं, क्या भी मधु जी के नाम से हैं तो ठीक है। तो मधु जी जब लौट के आए दोपहर के बाद शाम को, तो मैंने वो 1,000 रुपए और वो मनी ऑर्डर के उसमें से कागज में से जो फाड़ के चिट होती है वो दे दी। उन मेरी तरफ देखने लगे घूर घूर के कि जैसे मैंने कोई गलती कर दी। मधु जी मुझसे कहने लगे तुमने क्यों लिए, मैंने कहा मधु जी मुझे क्या मालूम, मनी ऑर्डर आया, किसने भेजा, क्यों भेजा, मैंने कहा कोई आपका दोस्त होगा, मैंने ले लिए। बोले नहीं वैदिक तुम समझते नहीं हो, तुम बच्चे हो अभी, ये मालूम किसके पैसे हैं, ये उस चावल वाले के पैसे हैं जिसके खिलाफ मैं पिछले 1 हफ्ते से संसद में बोल रहा हूँ और मैंने मनु भाई शाह की खाट खड़ी कर रखी है। मनु भाई शाह उस समय कॉमर्स के मिनिस्टर थे और वो चावल कुछ आयात किया गया था या निर्यात किया गया था, उस पर बड़ी बहस चल रही थी संसद में। तो बोले ये पैसे नहीं है, ये रिश्वत है, रिश्वत, इसको फेंको, इसको वापस करो। उसी दिन या उसके दूसरे दिन सुबह मैं पोस्ट ऑफिस गया, मैंने वो पैसे वहाँ वापस किए।
1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री पद की पेशकश हुई जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया और अपने स्थान पर एक और समाजवादी नेता पुरुषोत्तम कौशिक को मंत्री बनवाया।
जब जनता पार्टी बनी थी तो उनका नाम अध्यक्ष पद के लिए तय हुआ था और उनके अध्यक्ष पद के नाम का ऐलान भी होने का तय हो गया था, रात को संसदीय बोर्ड में तय हो गया था। हम लोग का जो जनता पार्टी का पहला सम्मेलन हुआ था प्रगति मैदान में, उसमें उस समय अध्यक्ष प्रधानमंत्री बुराजी भाई थे, उनको सुबह ऐलान करना था। पर जब वो सुबह ऐलान करने के लिए मंच पर खड़े हुए, उसी समय उनके लिए कुछ लोगों ने रोका और उन लोगों ने कहा कि और रुक जाइए, और उनको फिर किसी प्रकार का प्रयास करके उनको अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया। इसके बाद में फिर उनसे कहा कि आप विदेश मंत्री बन जाइए, तो उन्होंने विदेश मंत्री बनने से इनकार किया कि हमको नहीं बनना है। उनसे कहा अच्छा आप तब से किसी को नामजद कर दिए, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के जो हम लोग के समाजवादी नेता अभी जीवित हैं पुरुषोत्तम कौशिक, अपने स्थान पर उनको मंत्री बनाया।
1979 में उन्होंने जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता का मुद्दा जोर शोर से उठाया जिसकी वजह से जनता पार्टी में विभाजन हुआ और मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई।
देखिए मैं तो ऐसा मानता हूँ अगर मधुलिमय अध्यक्ष हो जाते जनता पार्टी के, तो जनता पार्टी कभी टूटती नहीं, इसका चरित्र बदल जाता है। मधुलिमय टूट नहीं चाहते थे, परंतु मधुलिमय वैचारिक राजनीति की स्पष्टता भी चाहते थे। उन्होंने दूरी सत्ता का सवाल उठाया। जब जनता पार्टी बन रही थी उस समय प्रश्न आया था सामने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और जनता पार्टी में जो शामिल होने वाले जनसंघ के लोग हैं, इनके रिश्ते क्या होंगे। उस बैठक में संघ के लोगों ने कहा था कि भाई संघ तो एक अलग प्रकार की संस्था है, ये जनसंघ जो है राजनीतिक संस्था है और ये लोग इसमें काम कर रहे हैं, इनका संबंध हमसे नहीं है। परंतु जब जनता पार्टी में वो लोग शामिल हो गए और उनको कुछ अच्छी संख्या में सीट्स मिल गई, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे उस पूरे निर्णय को अपने आप निरस्त करके बदलाव करने का प्रयास किया। पार्टी बनाना कुछ लोगों की लाचारी थी और पार्टी तोड़ना लोगों का षड्यंत्र था और षड्यंत्र का दोष मधुलिमय के ऊपर लगा दिया गया। मधुलिमय का इस तोड़ने से कोई संबंध नहीं था, एकमात्र मधुलिमय को इस पे आक्षेपित किया गया, क्योंकि मधुलिमय की प्रतिभा से, मधुलिमय के सिद्धांत से, मधुलिमय के चरित्र से, बेबाकी से बहुत सारी व्यवस्था के लोगों के मन में भय था।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
और चलते चलते मुख्य समाचार सिंधु वासनी से।
बीबीसी समाचार। भारी बारिश और तेज हवाओं वाले चक्रवाती तूफान फणी की वजह से ओडिशा में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला की वजह से 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वेनेजुएला में सत्ता संघर्ष के बीच विपक्ष के नेता ग्वाइदो ने अपने समर्थकों से मादुरो के खिलाफ लड़ाई जारी रखने को कहा है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे तिलक राज भाटिया। आपसे अगली मुलाकात इंडिया बोल में होगी। तब तक खबरों के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय का नमस्कार।